फरवरी माह वैलेंटाइंस डे के लिए भी जाना जाता है। और इस माह बॉलीवुड की दो दिग्गज हस्तियों को हमने खो दिया। तो चलिए दोस्तों, आवारा की बातें में अजय आवारा जी के साथ आज हम इसी विषय पर एक संवाद करते हैं। नमस्ते सर।
नमस्ते भावना जी,
कैसे हैं सर आप?
मैं अच्छा हूँ। आवारा की बातें में आपका स्वागत है एवं सभी श्रोताओं का भी मैं स्वागत करता हूँ।
जी सर, चुभन पर भी आपका और हमारे श्रोताओं का स्वागत है। शुरू किया जाए
अब
सर।
बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, इस बार का विषय बहुत ही विशेष विषय है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फरवरी का महीना वैलेंटाइन डे के लिए जाना जाता है। दूसरे फरवरी के दूसरे हफ्ते में वैलेंटाइन वीक मनाया जाता है पूरा। और
जी
ऐसा कहा जाता है कि पूरा पूरा हफ्ता जो है प्रेमियों को समर्पित होता है, प्रेमियों के प्रेम को समर्पित होता है। आज प्रेम की इस परिभाषा पर, प्रेम के इस पर्व पर हम बात करेंगे कि इसकी सार्थकता क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, और हम क्या छोड़ रहे हैं और क्या पा रहे हैं। अब
जी
जब बात प्रेम की चली है, तो जब हम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम जो है मधुर बनता है संगीत से। और मेरा मानना यह है कि अगर हम संगीत की बात करें, प्रेम की बात करें और लता जी की बात ना करें और बप्पी लहरी जी की बात ना करें, तो बहुत ही गलत होगा। हमारे लिए ये महीना बहुत ही अच्छा नहीं रहा, जबकि वैलेंटाइन डे भी इसी महीने में पड़ता है। हमने स्वर सम्राज्ञी, हमारी स्वर सरस्वती लता जी को खोया है।
जी
उनका जाना हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान है कि शायद हम इसकी भरपाई ना करें। और मैं चुभन की तरफ से, अपने सभी श्रोताओं की तरफ से लता जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ।
जी बिल्कुल
इसके साथ ही बप्पी लहरी जी भी कहते हैं, उन्होंने अलग रीति, उन्होंने एक अलग दिशा भारतीय संगीत को दी थी। लता जी ने एक एक सोपान स्थापित किया था, एक स्तर स्थापित किया था हमारे भारतीय संगीत का। और उस स्तर में नई दिशा जो है बप्पी लहरी जी ने दी थी। जो डिस्को जो उन्होंने भारतीय संगीत में जोड़ा था, वो बप्पी लहरी जी ने जोड़ा था। तो एक उच्च स्तर लता जी का और एक नया आयाम बप्पी लहरी जी का, तो दोनों ने मिलकर, ये आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संगीत को एक अलग ही रंग में रंग दिया था। तो बप्पी
जी
लहरी जी भी इस बार हमें छोड़ के चले गए हैं। और मैं एक बार फिर चुभन की तरफ से एवं श्रोताओं की तरफ से बप्पी लहरी जी को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और मेरे हिसाब से ये ऐसा नुकसान है जिसकी हम कोई भरपाई नहीं कर सकते। बप्पी जी को हम गानों के तौर पर याद करेंगे और लता जी को हम गानों के तौर पर सिर्फ याद नहीं करेंगे, वो तो पूजनीय है। जब भी
जी
कोई गीत का संग गायक अपना गीत गाएगा, जब भी कोई संगीतकार अपना संगीत बनाएगा, तो वो लता जी को सरस्वती की देवी के रूप में पूजेगा और तभी अपने अपने गायन का, अपने संगीत का शुरुआत करेगा। वो स्थापित हो गई एक देवी की तरह, उनको हम वो ये समझ लीजिए कि वो हमारे बीच में अमर है।
जी आवाज
तो
तो उनकी अमर ही है सर, युगों युगों तक रहेगी वो
लता जी
आवाज।
सिर्फ आवाज ही नहीं, वो एक हमारे लिए ईश्वर के रूप में बनकर अमर हो गई है।
जी
और
बिल्कुल
बप्पी जी अपने संगीत से अमर है, अमर है। दोनों ने अपनी अपनी एक अपना योगदान दिया। लता जी ने तो वो स्तर दे दिया है भारतीय संगीत को कि भारतीय संगीत आज पूरी दुनिया में उत्तम संगीत में माना जाता है। भारतीय संगीत ही ऐसा संगीत है जिसमें दुनिया की हर तरह के संगीत का समावेश है, और शायद किसी और संगीत में ऐसा नहीं है कि दूसरे संगीत का समावेश किया गया हो।
बिल्कुल
और ये क्रेडिट जो है दूसरे संगीत को, हमारे भारतीय संगीत में समावेश करने का, ये श्रेय जाता है बप्पी जी को।
जी,
तो हमने
डिस्को
दो हमें दो ऐसे लोगों को खो दिया है जिन्होंने एक अलग अलग पहचान दी है भारतीय संगीत को, और हमने उन्हें आज नहीं खो दिया। ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना अच्छा महीना प्रेम का महीना, और हमने प्रेम के दो सितारे खो दिए। क्योंकि जो लता जी ने गाने गाए हैं, तो उन्होंने प्रेम से सबको जोड़ा है, और देश प्रेम का, उनके देश प्रेम पर उनका गीत जो है ए मेरे वतन के लोगों, वो उन्होंने उस गीत ने प्रेम की नई परिभाषा स्थापित की थी। उन्होंने बताया
जी
था, इसका इस गीत ने ही बताया कि प्रेम सिर्फ मानव के बीच में नहीं होता है, देश के और भावनाओं के बीच में भी होता है।
जी
तो हम जब प्रेम की बात कर रहे हैं, तो हमें इस गीत को, इस भाव को भी ध्यान रखना है। और बप्पी जी ने तो संगीत को इस तरह से आगे बढ़ाया था कि वो युवाओं की धड़कन बन गया था। और जब हम
जी
प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम की शुरुआत युवाओं से ही होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हम प्रेम को नए रूप में भी याद कर रहे हैं।
जी
और जहां तक प्रेम की बात है, तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया करीब आ रही है, हम एक दूसरे की परंपराओं से परिचित हो रहे हैं, हम एक दूसरे के कहते हैं धार्मिक जो अनुष्ठान, उनसे परिचित हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल ये आता है कि क्या हमें किसी भी धर्म की या देश की परंपरा को क्या यूं ही अपना लेना चाहिए? ये सवाल आता है। वैलेंटाइन पाश्चात्य पद्धति की एक पद्धति का एक त्योहार है, एक पर्व है। अब पर्व है, सेलिब्रेशन है, या एक समय काल है, जो भी है, लेकिन क्या हमें इसको यूं ही अपना लेना चाहिए? क्या हमें इसकी पड़ताल नहीं करनी चाहिए? क्या हमारे परंपरा में प्रेम के को लेकर कोई पर्व है नहीं? ये हमने नहीं सोचा।
जी
ये अच्छी बात है कि हिंदू धर्म एक बहुत खुला हुआ धर्म है, सबको अपनाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी परंपराओं को तो दकियानूसी कह के छोड़ते रहें और दूसरी परंपराओं को अपनाते रहें।
जी
आप
बिल्कुल
दूसरे देश की परंपरा अपनाइए, बहुत अच्छी बात है, अपनाइए, उनको अपने में समावेश कीजिए। अच्छी चीजों में समावेश करना बुरा नहीं है, लेकिन हम अपनी रीतियों को क्यों छोड़ते जा रहे हैं, उनको क्यों छोड़ते जा रहे हैं, उनको दकियानूसी हम क्यों कह रहे हैं?
जी
जहां तक बात दकियानूसी की आती है, तो क्या हमने ये रिसर्च कर ली है, ये साबित कर लिया है कि जिस परंपरा को हमने निभाया, अपनाया है, क्या वो भी पूरी तरह से सही है या नहीं है? क्या उसकी परिभाषा भी पूरी तरह से सही है या नहीं है? ये भी हमने नहीं किया शायद। पता नहीं हमारे बीच में ऐसा क्या कि हम परंपराओं, रीतियों के गहन अध्ययन में रुचि रखते ही नहीं है। उदाहरण तौर पर लीजिए, हमारे भारतीय संस्कृति में जो वसंतोत्सव होता है, वो प्रेम का ही प्रतीक है। तो हम कैसे कह
जी
सकते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में प्रेम पर्व की कोई कोई उल्लेख ही नहीं है? और जहां तक मुझे याद आता है कि उत्तर पूर्व में एक जाति है, वहां पर एक मेला लगता है, जहां पे उस मेले में उस दिन, खास दिन, प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। आप जिसे प्रेम करते हैं उसको अभिव्यक्ति कहते हैं, उसको प्रपोज करते हैं कि शादी के लिए प्रपोज करते हैं, और जब वो उसको स्वीकार करते हैं तो वहीं की वहीं समाज के सामने उनकी शादी की जाती है। हम ये मान सकते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे कुछ टुकड़े मौजूद हैं कि हमने खुलेआम प्रेम को स्वीकारा है, खुलेआम प्रेम की अभिव्यक्ति की है और खुलेआम उसको मान्यता दी है। और ये पाश्चात्य तरीके की तरह नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग विशेष को ये दिया गया है। समाज हमारे हमने अपनी रीति में समाज का हिस्सा बनाया गया पाश्चात्य में, जबकि वो समाज का हिस्सा नहीं बनाया गया, एक विशेष वर्ग तक इसको सीमित कर दिया गया है। आप क्या कहते हैं भावना जी?
आपने बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से मैं।
और इससे बड़ी बात क्या है कि शायद हम पता नहीं क्यों हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया तो उसके अंतर में हम नहीं पहुंचे। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो पता नहीं अनजाने अनजाने हम किस लिए सिर्फ एक युवा प्रेम तक ही बात करते हैं, जबकि प्रेम के अलग रूप होते हैं, कई रूप होते हैं। प्रेम के रूप में माँ बाप का प्रेम भी आता है, पुत्र पिता पुत्र का प्रेम भी आता है, माँ पुत्री का प्रेम भी आता है, भाई बहन का प्रेम भी आता है, प्रेम में प्रेमिका का प्रेम भी अवश्य वो भी आता है, पति पत्नी का प्रेम भी आता है। अब मैं प्रेमी प्रेमिका का प्रेम को और पति पत्नी का प्रेम को मैं आज अलग अलग बात कर रहा हूँ, तो माफ कीजिएगा, क्योंकि पहले माना जाता था कि जो प्रेमिका है वही आपकी पत्नी बनेगी और उसमें अंतर नहीं होता था। लेकिन आज प्रेमी प्रेमिका होना एक पैशन बन गया है और पति पत्नी एक एक अलग, ये आप लगा लीजिए, कर्तव्य बन गया है। वो प्रेम परिभाषा नहीं रही, वो
जी
कर्तव्य,
जी
सामाजिक कर्तव्य की परिभाषा में आ गया कि हाँ ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें शादी करनी है, और प्रेमी प्रेमिका को फैशन बना दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी को अपने मन के भाव से जोड़ते हैं तो उसे संबंध स्थापित करते हैं, उसकी प्रेम की परिणति होती है। अगर आपने किसी महिला को प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया है तो उस प्रेम की परिणति क्या है? परिणति तो हमने जानी ही नहीं है। हमने वैलेंटाइन डे पे उसको प्रपोज कर दिया, हमने उसको भी जाहिर कर दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उसकी परिणति क्या है? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जितने हम प्रपोजल देते हैं और उसकी परिणति, तो वो प्रेम परिणति तक नहीं नहीं पहुंचते। इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल प्रेमी प्रेमिका का प्रेम एक फैशन है और शादी का प्रेम जो है एक सामाजिक जिम्मेदारी मानी गई है, ना कि प्रेम, उसके में से प्रेम निकाल दिया गया है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आपका क्या विचार है, क्या कहते हो?
ठीक कह रहे हैं, हमारी संस्कृति जगह मान्य है, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। और प्रेम की वास्तव में कोई सीमा नहीं, वो तो हम लोग उसको किसी एक या दो रिश्तों से बांध कर देखते हैं तो वो तो फिर बहुत ही सीमित, उसे दुस्वार्थी
हाँ,
कहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा
जैसा मैंने
आपने,
आपको बताया कि हम किसी परंपरा को जब अपनाते हैं तो उसकी गहराई में नहीं जाते हैं। हमने अपनी परंपरा को
जी
छोड़ा दकियानुसी कहकर, क्योंकि हम उसकी गहराई में नहीं गए कि वो परंपरा चली क्यों थी, और हमने उन्हें छोड़ दिया। और ये बड़े विस्मय की बात है कि हमने इस परंपरा को अपनाया तो उसकी गहराई में भी हम नहीं गए। हमने वैलेंटाइन डे को सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के, युवाओं के शॉर्ट टर्म, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लव को ही कहते हैं प्रेम का सूचक मान लिया है, और वही प्रपोज करते हैं और फिर कितने दिन चलता, कितने महीने चलता, प्रेम वो अलग बात है। जबकि वैलेंटाइन डे के पीछे कहानी दूसरी है, जो शायद लोगों को पता भी नहीं है। वैलेंटाइन डे के पीछे कहानी ये है कि हमारे संत आज से करीबन 2700 साल पहले, 3000 वर्ष पहले संत वैलेंटाइन हुए थे, ग्रीक में, ग्रीस में,
जी
और उसमें वहां के राजा होते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनके, और वो मानते थे कि अगर युवा प्रेम करता है और शादी करता है तो वो अच्छा सैनिक नहीं बन सकता, तो उनके सैनिकों को प्रेम करने की और कहते हैं शादी करने की इजाजत नहीं थी। तो संत वैलेंटाइन उस समय पादरी थे, और वो हाँ उन्होंने राजा के इस अभियान के खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ी हुई थी, एक आंदोलन चलाया हुआ था कि सैनिकों को भी प्रेम करने का, परिवार बसाने का हक है, और वो चोरी छिपे सैनिकों की शादी करवाया करते थे, है ना। तो जब शादी करवाते थे उसमें वो पकड़े गए थे, और तब उनको फांसी दे दी गई थी, और उनके जो जिस दिवस पे फांसी दी गई थी वो 14 फरवरी था, उनका उनका बलिदान दिवस था, उसको हम वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, प्रेम प्रतीक के रूप में मनाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने योग्य बात ये थी कि संत वैलेंटाइन जो प्रेम के प्रतीक के रूप में शब्द, जो प्रेम की शुरुआत करते थे, उसको परिणति तक पहुंचाते थे, विवाह करवाते थे। विवाह जो है प्रेम की परिणति है, तो विवाह जब करवाते थे उन्होंने प्रेम को फैशन में नहीं लिया, उन्होंने उसको, विवाह को सामाजिक बंधन के रूप में माना गया कि पति पत्नी का ही प्रेम एक सच्चा प्रेम है, और उसी परिणति विवाह है, शादी है, सामाजिक जिसे कहते हैं स्वीकारिता उसकी शादी में ही है। लेकिन आज हमने इसको, हम जानते ही नहीं है कि संत वैलेंटाइन ने किस तरह से इसका शादी के, इसकी शादी का के रूप में इसको परिणित किया था, और हम तो सिर्फ कहते हैं फैशनेबल प्रेम के रूप में करते हैं। तो हम जिसका मुख्य अर्थ है उसको हम भूल चुके हैं, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम फैशन के रूप में चलेगा, और प्रेम एक फैशन की वस्तु नहीं है, प्रेम एक भाव की वस्तु है। प्रेम के जो अंश हमारे हमारे धर्म ग्रंथ में पाए गए हैं, जैसे वसंतोत्सव है, प्रपोजल डे है जो करते हैं, और इवन आपने देखा होगा स्वयंवर क्या है, स्वयंवर, स्वयंवर भी तो प्रेम विवाह ही है।
जी जी बिल्कुल
गंधर्व विवाह क्या है, ये भी तो प्रेम विवाह ही है
जी
ना। पहले पुराने जमाने में हमारे संस्कृति में ये है कि आपको अपनी मर्जी से शादी, राजकुमार राजकुमार क्या करते थे, पसंद करते थे फिर कहते विवाह करते थे। तो प्रेम विवाह का उल्लेख तो हमारे संस्कृति में भी है, हमने
जी
उसको अगर गलत रीति रूढ़ियों में बांध कर उसको भ्रष्ट कर दिया है तो गलती हमारी है, तो हमें उसको सुधार करना चाहिए। हम उसका सुधार नहीं कर रहे हैं, हमने उसका त्याग कर दिया है। वो क्या,
जी
हमारे जो भारतीय संस्कृति जो प्रेम की रीति है उसका त्याग कर दिया, उसको सुधारा नहीं है, जबकि वो बहुत ही आप कह सकते पवित्र फॉर्म में थी। और
जी
संत वैलेंटाइन ने जो परंपरा शुरू की थी वो भी बहुत शुद्ध फॉर्म में थी, क्योंकि वो जीवन भर का बंधन जोड़ते थे ना। तो हमने संत वैलेंटाइन के ही नियम को समझाया और ना ही भारतीयता के नियम को समझाया, तो हम क्या
बिल्कुल
कर रहे हैं फिर, प्रेम का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर एक धार्मिक जो वैलेंटाइन ने त्याग किया था, जो उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था उस राजा के खिलाफ प्रेम को जिंदा करने के लिए, उसका हम क्या क्या आदर कर रहे हैं, क्या उन्होंने यही किया था कि आप अभिव्यक्ति कीजिए। और
एक बात मैं कहना चाहूंगी सर कि जैसे सेंट वैलेंटाइन जिनके नाम पर ये दिवस मनाया जाता 14 फरवरी को, और वो संत थे ये भी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो एक
नहीं, लोगों
संत
को पता, लोगों को पता ही नहीं है वैलेंटाइन कौन थे, ये लोगों को पता ही नहीं है वैलेंटाइन कौन थे, इसकी शुरुआत कैसे हुई लोगों को ये नहीं पता है। इसकी शुरुआत 3,000 साल पहले हुई थी, और पहले ही बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया था, बाद में प्रेम से जोड़ दिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेम को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जी
तो उन्होंने उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति को उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना था, उन्होंने प्रेम की परिणति को महत्वपूर्ण माना था।
जी
वो विवाह कराते थे ना, वो
जी जी समझ
तो विवाह परिणति है, उन्होंने अभिव्यक्ति को नहीं लिया था उन्होंने। हमने क्या करा है, हमने अभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन हमारी हमारा प्रेम अभिव्यक्ति के शुरू के अभिव्यक्ति में खत्म हो जाता
जी
है। सोचने वाली बात यही है, समझने वाली बात यह है कि आज का युवा पीढ़ी समझ पाएगी कि हम प्रेम की अभिव्यक्ति तो की, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन क्या आप उस प्रेम को निभा रहे हैं, परिणति तो पहुंचा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो क्या आप संत वैलेंटाइन का कि उनके उनके मानहानि नहीं कर रहे हैं, उनका उनका अपमान नहीं कर रहे हैं,
अभिव्यक्ति होती है परिणति नहीं हो पाती, बहुत
पर
सही
नहीं
कहा।
होती है, नहीं पाती। होता है कि इस वैलेंटाइन में प्रपोजल आप एक को करते हैं, अगले वैलेंटाइन में प्रपोजल किसी और को कर रहे होते हैं।
जी बिल्कुल
मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कहता कि सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, शायद बहुत ही ज्यादा, अगर मैं बहुत हाई परसेंटेज दूंगा, 5% प्रेम भी परिणति में नहीं बदलते।
जी
और जबकि संत वैलेंटाइन ने विवाह पर जोर दिया था, निजी सिर्फ अभिव्यक्ति पर, हम अभिव्यक्ति बैठ के ऊपर, तो क्या इसको फैशन बना के मौज मस्ती की, हमने तो मौज मस्ती की वस्तु बनाकर रख देंगे, या फैशन बनाकर रख देंगे, या स्टेटस सिंबल बनाकर रख देंगे। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना स्टेटस सिंबल ही माना जाता है, किसी ये बड़ा बड़े प्राउड से बुलाता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बड़े स्टेट वैसे बड़े शान से बोला जाता है। तो हम इसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं क्या।
जी
तो प्रेम की जो अभिव्यक्ति है उसका उसका भाव तो कहीं लुप्त हो गया, तो फैशन बन गया, प्रेम फैशन कैसे हो सकता है, प्रेम स्टेटस सिंबल कैसे हो सकता है। अगर मैं किसी को प्रेम करता हूँ तो उस प्रेम पे मुझे अभिमान होना चाहिए, लेकिन मेरी पत्नी को मैं प्रेम करता हूं तो वो समाज के लिए गर्व का विषय कैसे हो सकता है, समाज में उदाहरण हो सकता है,
बिल्कुल
लेकिन वो सिर्फ स्टेटस सिंबल नहीं हो सकता। ये कोई फर्नीचर थोड़ी है, ये कोई गाड़ी थोड़ी है जो कि मेरे को मेरे दिखावे के लिए आता है। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिखावे की चीज हो गई है कि
जी
मेरी बॉयफ्रेंड मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हारा तुम्हारा ये भी नहीं है। आज कॉलेज बातें पहुंचते हैं, पहले इस चीज को दिखाया तुम्हारा गर्लफ्रेंड कौन है बॉयफ्रेंड कौन। आजकल ये बात को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट क्या था, महिला मित्र पुरुष मित्र,
जी
महिला मित्र पुरुष मित्र में बहुत ही महिला मित्र और जो पुरुष मित्र की बात करते हैं तो ये बहुत ही शुद्ध भाव है कि आप एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के साथ भी हैं, और एक दूसरे के आपके बीचों को रिश्ते का नाम भी नहीं है। तो ये समझ ले जिस रिश्ते का नाम नहीं है उसमें आप एक दूसरे साथ खड़े के आप एक दूसरे को सब साथ लेके चल रहे हैं तो कितना शुद्ध रिश्ता हुआ वो। तो हमने पुरुष मित्र मित्र और महिला मित्र को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बदल कर उसको प्रेम किया, उसको टाइम पास चीज बना लिया। हम उसकी गहरे तक इस रिश्ते की गहरे तक भी नहीं पहुंचे। पुरुष मित्रता क्या होती है, मित्रता में हाथ डाले घूमना, एकांत में जाके बैठना नहीं होता है। मित्रता में एक दूसरे के भाव को समझकर आपकी समस्या को सुलझाना होता है, वो तो नहीं है। तो हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात करते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हिंदी मीनिंग पुरुष मित्र स्त्री मित्र तो हुआ,
जी बिल्कुल,
लेकिन हम
क्योंकि
मित्रता को तो हमने साइड में रख दिया। और अगर आप
जी
प्रेम की अभिव्यक्ति बात करते हैं कि मेरे प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका, हम प्रेमी प्रेमिका भी नहीं बोलते। अगर प्रेमी प्रेमिका है तो उसकी सच्चाई कहाँ है, उसका कमिटमेंट कहाँ है, उसका कहते हैं आपका जो आपका जो ऑफर है कि उसके कमिटमेंट क्या है कि आप कितने दिन चलाएंगे, वो भी नहीं है। तो
जी
क्या हमारे जो युवा है उसकी मानसिकता विकृत नहीं हो चुकी है क्या? हमने अपने क्रिश्चियनिटी ने ये नहीं बताया कि संत वैलेंटाइन का अभिप्राय क्या था, और हमारे हमारे हमने अपने ये नहीं बताया कि हमारे इससे हमारे हमारे धर्म में प्रेम की जगह क्या है। तो आज का युवा तो उसको तो बेचारे पास कोई रास्ता ही नहीं है ना, ना तो उसको कहते हैं पाश्चात्य की रीति पता है और ना ही हिंदुस्तानी रीति पता, तो वो कहाँ जाएगा वो, और इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सवाल याद, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम माँ बाप हैं।
जी
हम आज देख लीजिए, हम माँ बाप भी आज क्या बात करते हैं, ये हमारा हमें ऐसे ब्रांड कपड़े पहनने चाहिए, हमें ये पहनना चाहिए, ये हमारा स्टेटस है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा वो है। हम संस्कार कहाँ देते हैं? तो संस्कार देंगे नहीं तो प्रेम की अभिव्यक्ति कहाँ से आएगी, और प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं समझ आएगी तो फिर चाहे पाश्चात्य रीति हो चाहे हिंदुस्तानी रीति हो उसका दुरुपयोग ही तो होगा ना। फिर
जी बिल्कुल
तो दुरुपयोग बन गया। हमने प्रेम के जो शब्द है, जो इतना महान शब्द है, प्रेम ईश्वर से भी होता है, प्रेम पति से भी होता है, प्रेम भाई से भी होता है, तो सबके रूप अलग है। लेकिन प्रेम में क्या होता है, अगर आप अपनी बहन से प्रेम करते हो आप उसका उसके सुख दुख का, उसके बुरे अच्छे बुरे ख्याल रखते हो, आप अपनी माँ से प्रेम करते हो उसके दुख सुख का अच्छे बुरे ख्याल रखते हो, आप अपने पति से प्रेम करते हो तो सुख दुख का अच्छे बुरे ख्याल रखते हो। तो ये प्रेम का अर्थ क्या है कि आप उसका पूरा वेलफेयर देखोगे, आप उसका
जी,
ना कि स्टेटस सिंबल है। आज
क्योंकि
आजकल प्रेम आजकल क्या बोलते हैं,
सर आजकल वैलेंटाइंस डे पर लोग थोड़ा सा मित्रों को या भाई बहन या अपनी माँ को या पिता को इस तरह से भी करने का थोड़ा सा शुरू हुआ है कि भाई प्रेम दिवस है तो जिसको भी हम प्रेम करें, गुरु हो या कोई बड़ा हो जिसको हम अपना मार्गदर्शक समझते हैं, उनको भी हम वैलेंटाइन समझकर अपना उनको उनको विश कर सकते हैं, उनको कुछ
हाँ
गिफ्ट दे सकते हैं, ऐसा हो
उनको
रहा
भी हम प्रेम करते हैं तो हम अपनी माँ को बोल सकते हैं हैप्पी वैलेंटाइन डे, क्योंकि हमारी माया वो भी हमें प्रेम करती है, उसका प्रेम
बिल्कुल
निस्वार्थ है। हम भाई को बोल सकते हैं, बहन को बोल सकते हैं। प्रेम
बिल्कुल
का अर्थ सिर्फ आकर्षण नहीं होता है, हमारी बहन से हमारा आकर्षण नहीं होता है, उससे हमारा बंधन होता है।
बिल्कुल
तो अगर आप प्रेमिका से प्रेम करते हो, आप प्रपोज करते हो, तो वो भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, वो भी बंधन होना चाहिए।
जी
क्योंकि आप प्रेमिका जोड़ो किस बात, भावना तक स्तर पर जोड़ो तभी तो प्रेम होगा ना, सिर्फ आकर्षण पे तो वासना हो गई। तो क्या हम जाने अनजाने अपने प्रेम को वासना में लिप्त नहीं कर रहे हैं क्या?
जी
तो हम अगर प्रेम वासना में लिप्त कर रहे हैं और फैशन बना रहे हैं तो आजकल होता क्या है, हमने बहुत सारे बहुत जरूरी बहुत दूर टाइम स्पेंड नहीं किया। टाइम स्पेंड करना तो आप प्रेम प्रेमिका अलग टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे सपोर्टिव टाइम स्पेंड कीजिए, विचार विमर्श कीजिए अपने बारे में। लेकिन करते क्या, मॉल में जाएंगे, मूवी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, डांस क्लब में जाएंगे, ये वहां जाकर टाइम स्पेंड करते। तो हमने वो तो उसको तो मौज मस्ती का साधन बना लिया। प्रेम मौज मस्ती नहीं है, प्रेम एक कर्तव्य है, एक अधिकार है, और प्रेम एक कर्तव्य है।
जी टाइम
हमने इसके
पास
अर्थ को भुला भुला दिया है पूरा। और हमने पूरी तरह से संत वैलेंटाइन का अपमान, उनको अपमानित करके रख दिया है। क्या हमारे तक कर्तव्य नहीं बनता, हर युवा के तक कर्तव्य नहीं बनता कि हम इसको इस दिन को, दिवस को मना रहे हैं तो उसकी पूरी गहराई में जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेरा मानना यह है कि सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, गुरु के जन उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारी वरिष्ठ पीढ़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनको मार्गदर्शन करें। हम ये बोल के उनको छोड़ देते हैं। आजकल बच्चों में तो फैशन चल रहा है, तो क्या ये हमारी, ये हमारे माता पिताओं की गलती नहीं कि हमने बच्चों इसलिए छोड़ दिया? फैशन है ये तो आजकल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रखना।
जी वही स्टेटस सिंबल वाली बात आ गई सर, जैसा
हाँ,
आपने कहा था
तो
बिल्कुल।
मेरा जो, अगर हम वैलेंटाइन डे बात करें, शायद श्रोता लोग ये मान रहे होंगे कि मैं प्रेम के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं प्रेम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रेम के अपमान के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये प्रेम का अपमान हो रहा है।
जी
अपमान नहीं है क्या? प्रेम सम्मान का है, प्रेम को सम्मान तो है नहीं, क्योंकि आप भावनात्मक तो रूप से जुड़े ही नहीं हो। प्रेम तो भावना, भावना प्रेम में भावना प्रधान होती है। तो आज क्या हो गया है? मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं तो दिखा रहे हैं, हम हमने गर्लफ्रेंड गिफ्ट दिया है, ये दिया है, वो दिया है, तू दिखाया था कि मैंने इतना महंगा गिफ्ट दिया, मैं इतना प्रेम करता हूँ। तो भौतिक हो गया है प्रेम का दिखावा, भौतिक हो गया है, मन से नहीं रहा है।
जी,
और ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इवन मैंने और देखा कि इवन ये हमारे थोड़ा प्रेम का रूप विकृत हो जा रहा, भाई बहन के रूप में भी देखा है मैंने। जैसे आप हमारे भाई परंपरा है हमारे संस्कृति में कि बहन जब आती है तो उसको हम गिफ्ट देते हैं। तो बहन क्या बोलती है? मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे 10,000 साड़ी दिलाई। मेरा भाई बहुत मुझे प्यार करता है, उसने मुझे एक अंगूठी दिलाई। अब यहाँ भाई बहन प्रेम में भी नापतोल आ गया। कैसे आ गया? कि उसने अंगूठी दिलाई तो वो प्रेम करता है, लेकिन कोई बेचारा गरीब है और अंगूठी नहीं दिला सकता, कोई सोने अंगूठी नहीं दिला सकता, वो सिर्फ 100 रुपए की कोई चीज दे सकता है। तो क्या बोलते भाई, आप मुझे कितने प्यार भी नहीं करते, 100 रुपए मेरे लिए 10,000 1,000 खर्च कर सकते, आप बेचारे के पास नहीं है तो क्या प्रेम कैसे दिखाएगा वो? ये मैंने समाज में देखा है मैंने।
इसका मतलब हर रिश्ते में ही भौतिकतावादी दृष्टिकोण हावी हो
हाँ,
गया, कहा जा सकता है
बहुत।
बस।
तो हम ये मैं वही बता रहा हूँ कि हम ये हमारे पेरेंट्स की कमी है, हमारे पूर्वजों की कमी है कि हमने अपनी भावी पीढ़ी में, अपनी पीढ़ियों में प्रेम के संस्कार नहीं दिए, भौतिकता ज्यादा दे दी है। अब चूंकि भौतिकता दे दी है तो भाई बहन के रिश्ते में भी आता है कि हमने क्या गिफ्ट दिया। तो प्रेमी जब हम भाई बहन के रिश्ते में गिफ्ट के आधार पर प्रेम को नापते हैं तो क्या प्रेमी प्रेमिका फिर जो वो बाहर के रिश्ते बनाए जा रहे हैं वो तो फिर भौतिक होंगे ही होंगे ना? उसमें
बिल्कुल
कहाँ आप कमिटमेंट समझेंगे, उसमें कहाँ आप समर्पण समझेंगे आप?
जी, बिल्कुल ठीक कहा।
और जब आप समर्पण समझेंगे नहीं तो आप प्रेम का अपमान अपमान ही कर रहे हैं ना फिर। तो पहले तो हमें हमें हमारे हमारी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परंपरा को समझें, दूसरी परंपरा के गहन को, गहराई को समझें उसके, और उससे हमारे बच्चों को शिक्षित करें, उनको मार्गदर्शन करें। हम मार्गदर्शन करते ही नहीं है। और ये पता नहीं क्या है हमारे समाज में, क्या हम प्रेम के रूप में अपने बच्चों से खुल के बात नहीं करते, उनको गाइड भी नहीं करते हैं,
जी
जबकि जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए।
जैसा
और
आपने में कहा सर कि स्वयंवर की प्रथा थी हमारे यहाँ, तो हमारे तो धार्मिक ग्रंथों में भी और हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं कि माता पिता जो है वो कन्या को ये देते थे अधिकार कि वो अपना वर स्वयं चुने। तो फिर इसका मतलब तो ये बात करना उस समय बुरा नहीं माना जाता था, लड़कियां स्वयं से कहती थी, और आज आपने ठीक कहा कि कोई बात भी नहीं इस तरह से करते और माता पिता कोई इस बारे में बच्चों को उचित सलाह नहीं देते, तभी
उसका
बच्चों
कारण
को।
यह है कि हमारा समाज हमारे धार्मिक पुराणों का अध्ययन नहीं करता है। हमारे जो धर्म रीति रिवाज, हमने जैसे रामायण सीरियल आया, महाभारत सीरियल आया, हमने देख लिया उसको, देख के भूल गए उसको, उसमें क्या दिखाया गया था हमने याद नहीं किया। हमारे जो रामायण है, चाहे गीता है, चाहे हमारी जो कहानियां हैं, जो हमारी धार्मिक कहानियां हैं, जो हमारी ऐतिहासिक कहानियां हैं, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो जो उसमें पाठ है उसको हम याद नहीं रखते, उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि प्रेम हमारे धर्म का हिस्सा है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है, उसको हम आगे लेके चलना है। हमने हुआ क्या है, क्योंकि हमारी संस्कृति मर चुकी है। कैसे मर चुकी है? पहले बाहर से आक्रमणकारी आए, बाद में अंग्रेज आए, फिर हमने जब आक्रमणकारी आए उन्होंने दमन किया हमारी संस्कृति का, तो हम अपनी संस्कृति भूलते चले गए। बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने ईसाइयत थोप दी, पाश्चात्य संस्कृति थोप दी, तो हम अपनी संस्कृति भूलते चले गए। और जाने अनजाने हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए हैं कि हम अपनी संस्कृति के मूल रूप को पहचानते ही नहीं है। जब हम संस्कृति के मूल रूप को पहचानते ही नहीं है तो हम प्रेम के रूप को क्या पहचानेंगे? प्रेम को हमने वासना से जोड़ दिया, प्रेम को हमने औरत आदमी के संबंध से जोड़ दिया, शारीरिक संबंध से जोड़ दिया है, जबकि प्रेम एक भाव है। और जब हम पहचानते ही नहीं है तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से ही जुड़े हुए नहीं है। आज के समाज में पहला कार्य तो हमें ये करना है कि हमें खुद स्वयं को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। संस्कृति का मतलब मेरा मतलब सिर्फ सनातन संस्कृति से नहीं है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो। अगर आप किसी भी धर्म में प्रेम की बात करेंगे तो उसका उसका विरोध कहीं भी नहीं है, ठीक
जी
है ना। तो हम अपनी परंपरा के गूढ़ में जाए, गहराई में जाए कि कैसे क्या कहता है, तभी तो हम प्रेम की बात करेंगे ना। और हमने उसको नकार ही दिया है तो हम क्या क्या शिक्षा देंगे अपने बच्चों को, फिर तो हमारे लिए पाप हो गया फिर।
जी
ये बात है ना। तो हमारे लिए एक, मेरे विचार में आज के समाज के लिए पहली जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है कि हम वापस मुड़े, अपने संस्कृति में जाएं, अपनी संस्कृति का अध्ययन करें, उसके तत्व को समझें और फिर अपनी पीढ़ी को शिक्षित करें। क्या हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद वो ज्ञान नहीं मिला है।
जी
हमारे समाज के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज हमारा समाज विकृत रूप में है, हमारा समाज ना तो पाश्चात्य है ना ही सांस्कृतिक हमारे सनातनी है। क्यों नहीं है, ना तो भारतीय पारंपरिक ही है ना पाश्चात्य रूप में। पाश्चात्य रूप में हम इसलिए अपनाते हैं कि हमें अपने स्टेटस सिंबल दिखाना होता है।
जी जी
परंपरा परंपरा हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमें अपने त्योहार मनाने होते हैं।
मुख्य समस्या यही है हमारे साथ, नाम
हाँ, लेकिन
उद्धरण।
ना तो हमें अपने त्योहार मनाने का कारण पता है और ना ही हमें पाश्चात्य संस्कृति का अर्थ पता है।
ठीक कह रहे हैं
तो
सर
हम जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें किसी का भी ज्ञान नहीं है। मतलब
आप।
ये लगा लीजिए आपको रास्ता नहीं पता और गाड़ी चला रहे हैं।
जी वैलेंटाइंस डे की बात जाने दीजिए सर। आप कोई भी फेस्टिवल देखिए, हम मनाते हैं, होली होती है, दिवाली होती है, तो होली में भी रंग लगा के अपनी फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना पहले हम ये जरूरी समझते हैं। त्योहार का हम ठीक से मना रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं कि नहीं, ये चीज हम बाद में सोच पाते हैं।
होली जो है सामाजिक प्रेम का प्रतीक है।
जी
होली सामाजिक प्रेम का प्रतीक है, रक्षाबंधन धार्मिक प्रेम का प्रतीक है, वसंत उत्सव प्रेमी प्रेमिका का प्रेम का प्रतीक है। तो हर प्रेम का सूचक तो हमारे धर्म है, लेकिन हम करते हैं क्या, हम सामाजिक प्रेम कहाँ करते हैं होली में, हम समाज कहाँ जोड़ते हैं समाज को।
जी जी
तो हम खुद
दिखाओ।
अपनी संस्कृति से दूर है, अपनी संस्कृति से हम दूर है, पाश्चात्य संस्कृति का हमें ज्ञान नहीं है। तो हम दिशाहीन है, और
और
जब हम खुद
दिखाओ
दिशाहीन है तो हम अपने युवाओं को क्या मार्गदर्शन करेंगे, और हमारे मार्गदर्शन फिर युवा आप प्रेम का फैशन नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे।
दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है,
दिखावे की
और
प्रवृत्ति बहुत ज्यादा।
भौतिकतावादी दृष्टिकोण, इन दो
हाँ,
तीन चीजों के कारण हम हर जगह पर मात खाते हैं
हमारे
लोग।
धर्म ग्रंथ पढ़ना पिछड़ापन हो गया, और
जी जी
बाइबल हम पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि हमारे ही नहीं है। तो
जी
हमें किसी का ज्ञान, हमें किसका ज्ञान है,
जी
एक सवाल, ये सवाल है। और यही कारण है कि हम जाने अनजाने पाश्चात्य संस्कृति का भी अपमान कर रहे हैं और भारतीयता का भी अपमान कर रहे हैं।
जी
हम
बिल्कुल
अपने जो हमारे जो प्रेम की छूट, जो अधिकार हमारे संस्कृति ने दिए हैं उसको भुला के बैठे हैं, और जिसको हम वैलेंटाइन डे को जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है हमें, उसको उसको हमने फैशन बना दिया है। आखिर उसके संत वैलेंटाइन ने भी विवाह प्रथा शुरू की थी, सैनिकों का विवाह करवाना शुरू किया था, ना कि उनको खाली प्रेम की अभिव्यक्ति तक छोड़ दिया था। हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपमान कर रहे हैं
ऐसी
इसका।
ऐसी बातें करी जाती हैं तो लोग शायद थोड़ा दकियानूसी सोच कहते हैं, लेकिन प्रेम तो एक अत्यंत ही उच्च मानवीय मूल्य है सर, और हमारे देश में तो इसका बहुत ही वो महत्व रहा है। आप देखिए, गाय को माता कहते हैं, धरती को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं। हमारे यहाँ तो हम हर जीव से और निर्जीव वस्तुओं से भी एक प्रेम का भाव रख लेते हैं, तो हमारे देश में तो प्रेम की कोई कमी नहीं रही है। ये तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व रहा है, तो
नहीं, बिल्कुल
कैसे
सही कहा। तो प्रेम प्रेम को हमने ऐसा दिखाने से मान लिया गया, प्रेम एक भाव है, हमने ये भूल गए हम उसको। प्रेम को हमने मान लिया कि ये तो कहते गलत चीज है, हम दिखाने से मान लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, प्रेम दिखाने से नहीं है। प्रेम कभी पुराना नहीं होता है, प्रेम हमेशा नया रहता है, प्रेम हमेशा फ्रेश रहता है, और प्रेम इंसान को प्रेरणा देता है, प्रेम इंसान को शक्ति देता है, प्रेम इंसान को एक कार्य करने का रास्ता दिखाता है, और एक उसके जीने का कारण होता है प्रेम। क्योंकि हम अपने 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 पुत्र से प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपने
बिल्कुल।
बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनके लिए हम आगे बढ़ते हैं।
प्रेम का कोई एक रूप नहीं, कई
तो
रूपों
एक
में
रूप
हर
नहीं है, प्रेम का एक रूप नहीं है। तो ऐसे ही
बिल्कुल
अगर हम प्रेमिका से प्रेम करते हैं तो प्रेम करते हैं, उसको स्वीकार कीजिए, उसको मानिए प्रेम करते हैं, और उसको लेकर चलिए आगे, ना कि फैशनेबल बनाइए कि मेरी गर्लफ्रेंड बैठ। आप
जी
प्रेमिका बोलो ना, गर्लफ्रेंड क्यों बोलते हो, लवर ही बोलो ना, आप क्या परेशानी इसमें। लेकिन गर्लफ्रेंड बोल के ना तो हम लवर, ना तो उसको हम प्रेमिका बना, हम लवर भी तो नहीं बोल रहे ना, तो प्रेमिका तो नहीं बना रहे उसको। और गर्लफ्रेंड का हमने मीनिंग नहीं पता हमें, स्त्री पुरुष मैत्री का तो हमें, स्त्री पुरुष मैत्री का तो किसी को अर्थ पता ही नहीं है। स्त्री पुरुष मैत्री तो बहुत दूर की बात है, समझ लो ये तो स्त्री पुरुष मैत्री तो बहुत उच्च कोटि की चीज है।
जी
हाँ उस पर कभी विचार किया जाता है, इतनी उच्च कोटि की चीज है स्त्री पुरुष मैत्री कि उसको एक एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो
जी
हमने इसको भी विकृत रूप में देख दिया और प्रेम के रूप को भी बिगाड़ दिया। तो क्या हमारे सामने सवाल ये है, क्या आज की पीढ़ी या पुरानी पीढ़ी अपने अपने संस्कृति में जमे बसे हुए प्रेम को उभार कर लेकर आ पाएगी? क्या जो वैलेंटाइन डे को मनाते हैं, क्या उसको हम असली रूप को पहचान पाएंगे? क्या हम प्रेम के जो विकृत रूप जो बिगड़ चुका है, क्या उसको हम दोबारा संवार पाएंगे? क्या हम प्रेम को सिर्फ फैशन और या अय्याशी और टाइम पास की वस्तु बनाकर रखें? सवाल ये है।
जी,
ये सवाल के साथ मैं छोड़ना चाहूंगा, ये सवाल मैंने श्रोताओं के सामने रखा है कि प्रेम को आप किस तरह स्थापित करना चाहेंगे, ये अब आपके हाथ में है कि प्रेम को आप एक उच्च मान देना चाहेंगे या इसको एक विवाद का वस्तु बनाकर रखें। प्रेम एक विवाद की वस्तु नहीं है, प्रेम एक सम्मान की वस्तु है। आइए इसे सम्मान दें, आइए इसका मान बढ़ाएं, आइए इसको अपनाएं, ना कि फैशन की चीज बनाएं।
जी बहुत
आप
सही,
सभी
आप
श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभार।